الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم. کل میں نے گزارش کی تھی خدمت میں اور واقعہ سنایا تھا حضرت گزارش یہ خدمت میں کہ وقت تھوڑا ہے اور دن جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں، میں نے زندگی بھی ختم ہوتے جا رہی، تو کل گزارش کی تھی کہ آج انشاءاللہ ظاہری بیعت ہوئی. مولانا بھی فرمایا تھا کہ میں ظاہری بیعت کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں نے دل میں سوچا کہ سب علماء ہیں ان کو کیا بتایا جائے. مولانا اشرف خان نے ہم سے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے سفر بجنور کے سفر میں، وہ واقعہ میں سناؤں تو اس میں ساری ترغیب آ جائے گی، پڑھے لکھے کو بھی ترغیب آ جائے گی. ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ، شیخ تھے، بہت بڑی ہستیوں میں سے تھے. ان کے پاس ایک بزرگ آئے شاہ صاحب سید تھے، ان کا نام بھی غلام رسول تھا. جن کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے آئے ان کا نام غلام رسول تھا، اور جو بیعت لینے آئے وہ سید غلام رسول شاہ صاحب. تو جب انہوں نے گزارش کی کہ حضرت میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ پہلے استخارہ کرو، استخارہ کرو اور جو معلوم ہو اس مطابق عمل کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گئے تھوڑی دیر مسجد کے ساتھ ٹیک لے کے بیٹھے، ستون کی مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لے کے بیٹھے اور آ گئے. پھر میں نے استخارہ کر لیا، نہ آپ وضو کیا، نہ نفل پڑے، نہ آپ سوئے. استخارہ آپ نے کیسے کر لیا؟ یہ فرمانے لگے کہ حضرت میں نے اپنے جی سے کہا کہ تو بیعت ہو جا، تو میرا جی مجھ سے کہتا ہے کائی کے لیے بیعت ہوتا ہے، بیعت ہو گیا تو بک گیا، تو بک گیا، پھر اپنی کوئی حیثیت نہ رہی، کوئی تیری منشا نہ رہی، مرضی نہ رہی، شاہ کی منشا، شاہ کی مرضی مطابق چلنا ہے تو کائی کے لیے بکتا ہے، سبر آزاد ہے. تو میں نے اپنے جی سے کہا تو بک جاتا ہے، اور بکنے کے بعد میری طرف سے دھیان، میری طرف دھیان پورا پورا میرے طرف، مہربانی کیجیے غور سے سنیں. میں نے اپنے جی سے کہا تو بک جاتا ہے، اب بکنے کے بعد معرفت رائے مل جاتی ہے تو بکنا آسان، سودا سستا ہے. معرفت رائے مل جائے تو سودا سستا ہے. میرا جی کہتا ہے، نفس مجھ سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کون سا قرض ہے کسی کے اوپر کہ وہ اپنی معرفت دے؟ پھر کون سی معرفت لازمی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کا کون سا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت آ کر نعوذ باللہ. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے مولا اپنی رحمت سے، فضل سے، کرم سے اپنی معرفت دے یا نہ دے، کم از کم میں روزے مار سے یہ تو کہوں گا میں نے کوشش کی. میں ہڈوں کوشش ہی نہ کروں سرے سے اور بڑے معرفت کے تقاضے کرتا رہا ہوں اور دعوے کرتا رہا ہوں، کوشش میں نے میں یہ اللہ تعالیٰ کا ضرور کہوں گا یا اللہ دینا تو آپ نے تھا، میں نے کوشش تو کی. پھر میرا نفس چپ کر گیا، پھر نہیں بولا. ہر سماتے ہیں سبحان اللہ، کیا استخارہ کیا. بار بار فرمائے سبحان اللہ، کیا استخارہ کیا، سبحان اللہ، کیا استخارہ کیا، بار بار فرمائے. چونکہ حضرت نے ان کو بیعت کیا. وہ جو غلام رسول صاحب شاہ صاحب تھے وہ کون بنے بعد میں؟ وہ ہستی جو سید غلام رسول شاہ صاحب تھے جنہوں نے بیعت لی، وہ بعد میں رسول نما بنے، مشہور تھے، جس کو چاہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدا دیکھو کیسے تھی. اور میرے مولا نے نیت کی بنا پر کہاں پہنچا ہے، رسول نما بنے. واقعہ میں بعد میں سناؤں گا. وہ کون، کیا نام تھا ان کا؟ سو رہے ہیں سارے، میں کیا کروں، میں نے کسی کوئی بات نہیں کر رہی، سارے میرے سے دیکھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں. क्या नाम था उनका? जाके 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 मुंह से कहो सारे किसी सब ने पूरा नहीं कहा। क्या नाम था उनका? हम सब कौन है? काश 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 ख्याल गुजर जाए। सब कलमा सारे पढ़ते हैं, गुलामी का कलमा शायद किसी को याद हो तो मैं भी किसी का गुलाम हूँ। हम भी सारे क्या हैं? मुझसे बड़ी दाढ़ी कुतरावी नाम गुलाम रसूल, काम सारे रसूल एकम सल्लल्लाहु के खिलाफ और नाम गुलाम रसूल, नाम मोहम्मद इस्लाम मोहम्मद दीन। कोई तो हया चाहिए, कोई तो गुलामी की लगाम चाहिए गले में, बड़े राज की बात। नफ्स की गुलामी है, इबलीस को खुश करने के लिए सारे काम किए जाए। कभी ख्याल भी गुजरा कि मैं भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्कतुल मुकर्रमा में एक दफ़ा बारिश नहीं हो रही, लोग नमाज इस्तिस्का, पुरानी बात। जिन्होंने गुलामी इख्तियार की कौलन और फेलन, उनकी जुस्ती दूर बनना बड़ी बात। सारे नफ्स की गुलामी इख्तियार करते हैं, मुझे बड़े बड़े थी काय के लिए, बीवी को खुश करने के लिए, एक चपेट में दांत निकाल दे। मैंने खुशी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए कि नफ्स की खुशी चाहिए? सारे नफ्स की रंगीनी और खुशियों की खातिर ही सुनन का कला कमा करते। कोई जूता ठीक नहीं पहनता, कोई मस्जिद में दाएं पांव से दाखिल नहीं होता। पता है ये पता नहीं है, बेपरवाही। गुलामी 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 काम की है, गुलामी नाम की नहीं है। एक शख्स नाम का गुलाम हो, काम का गुलाम ना हो तो अगर उसको दो मिनट के अंदर गुलामी से खारिज कर देते हैं। आपका कोई गुलाम हो, आपकी खिलाफ वर्जी करे काम की हुक्म की, आप बर्दाश्त कर लोगे? जरा सोचो, जरा सोचो, वहाँ बर्दाश्त हो जाएगा। इसी में आप सारे मार खाते हैं। ये पूछोगे कि गुलामी इख्तियार की थी कि नहीं की थी, जो आप तैयार होना चाहिए। गुलाम था मक्कतुल मुकर्रमा में, ताबीन तबा ताबीन के दौर के करीब का दौर था। जिन्होंने गुलामी कमाई, जिन्होंने गुलामी अपनाई, जो हकीकतन गुलाम बने वो कहाँ पहुँचे? तो बारिश नहीं हो रही मक्कतुल मुकर्रमा में, दुआएं करें सब दुनिया, या अल्लाह बारिश हो रही, नमाज एक दो पड़ेगी, दो दो पड़ेगी, तीन दो पड़ेगी, बैतुल्ला। कोई चार दीवारी नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी इस तरह की। तो हज़रत अब्दुल्ला मुबारक रहमत है, बहुत बड़ा नाम है अहलुल्लाह में से, अफजल ताबीन कहते हैं इनको, अफजल ताबीन में आते हैं। तो ये फरमाते हैं कि मैं भी दुआ मांग रहा था, शायद दुआ मांग रहा था, बारिश नहीं हो रही। मैंने देखा ये गुलाम है, मैं पीछे बैठा हुआ, तो उसने दुआ मांगी कि अल्लाह आपकी मखलूक है, किसी और की थोड़ी। या अल्लाह आपकी मखलूक, आप अपनी मखलूक से नाराज हो गए, खफा हो गए, और पानी बंद कर दिए। इस अंदाज से कहा उसने, या अल्लाह आपकी मखलूक है, आपकी पैदा की है, आप नाराज हो गए अपनी मखलूक से, बंदे हैं आपके, काम है गुस्सा ही करने, गुनाह करने, इनका तो काम है, हम गुट्टी में दाखिल है सर इसमें, आप तो खफा ना हो ना, आप तो क्या, आप पानी बंद कर दिया अपने बंदों का, ये क्या कि उसने हाथ से चढ़े तो बादल चढ़े हैं ऊपर, सारी दुनिया दौड़ी। हजरत ने बजाय घर में आने के गुलाम के पीछे चल पड़े, ये किधर जाता है? घर तक पहुँचने पहले बारिश मूसलाधार से हुई, तेज बारिश। तो हजरत ने गुलाम के पीछे पीछे जिस घर में गया निशान रखने के, घर में गया, घर पहचान, छोटे छोटे घर होते थे कच्चे, अब उस मकाम में तशरीफ रहते। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं, उनके यहाँ ठहरे थे, मिले वगैरह। कहते हैं हज़रत कमाल हो गया, क्या हुआ? फिर मैंने एक गुलाम की दुआ कबूल कर देखी, हज़रत चीख मारी, फरमाया तो उसके बगैर क्या लेने आया, उसको ले गया, मेहरबानी को ले गया। तो हज़रत जैसे तो बारिश थम चुकी थी, वापस चले उस घर में पहुँच, दुआ कर रहे थे, घर का मालिक बाहर निकला, मालिक से हर भी कुछ शनासाई थी, जानने वाला है, वो बड़ी मोहब्बत से आप हुकुम करें, आप क्यों तशरीफ है मुझे बता दें, मैं आपके पास आता, तो मुझे गुलाम चाहिए। और बोले क्या काम है मुझे आपसे गुलाम चाहिए। उनके मेरे पास बेशुमार गुलाम है, जहाँ से मर्जी दे, आ जाओ सारे, सब गुलामों को आवाज भी सारे आ गए, आप ये दे रहे हो, नहीं ये नहीं चाहिए, दूसरा बोला ये दे दो। अरे क्या खिदमत क्या कर रही है, क्या काम है, उनके पास मुझे गुलाम चाहिए, सारे बुलाए, वो गुलाम नहीं आया। वो सबसे अखीर पे है, नहीं पतला दुबला कुरैश, पतला दुबला नहीं, वो जी बेचारा आया, हमारा मुझे ये चाहिए, ये मैंने नहीं दे रहा, मैंने ये नहीं दे रहा, मुझे ये चाहिए। अब गुलाम देख रहा कि उसके बारे में तकरार हुआ, हमारा मुझे तो यही चाहिए, उनका ना मैंने ये नहीं दे रहा। जब से ये मेरे घर में है, मेरे घर में बरकत बहुत है, आज हर शख्स कसरत के पीछे भाग रहा है, बना फिर दुनिया हो रहा है कसरत कसरत, 5 रुपए हों बरकत वाले हों, वो 5 करोड़ से बेहतर हैं जो भी बरकते हों। इंसान को क्या करना चाहिए, मुंह से कहना बरकत ढूंढनी चाहिए, इंसान को सोते मैंने भी कहा, मुझे भी बड़ी नींद आई, मैं भी सफरदार 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 हूँ, तो मेरे साथ देखते हैं और देख के कहते हैं कि हाँ मुझे तो नींद बड़ी सफर आई। इंसान को क्या ढूंढना चाहिए, आए सीने में दर्द उठता है इस बात, इंसान को क्या ढूंढना चाहिए, मुंह से कहें सब कहें, नमाज में क्या पढ़ते हैं, कहाँ से नमाज शुरू करते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यही शुरू करते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं, जब कहें आओ करो, कहते कहाँ दिया हुआ, या तेरा नाम क्या है, फतबारक इस्मुका, या तेरा नाम क्या है, बरकत वाला है, जब कराया गया तो कहते जी कहाँ दिया हुआ है, बरकत का चेहरा मोरा नहीं है, इसी से कहते कहाँ दिया, शुरू यही से करते हैं नमाज की इब्तिदा ये है, सुबहानक अल्लाहुम, सुन रहे हैं सो रहे हैं, कौन सो रहे हैं, इन्हें कल जाके क्या किसी को बताना है, ये खुद ही सो रहे हैं, तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला, मुंह से इकरार करते हैं कि यार तेरा नाम क्या है, जब कहें कि आओ करो कहते जी कहाँ दिया, ये तो मैंने सुना ही नहीं, मुंह से कह, तो इंसान क्या तलाश करना चाहिए, सूरह रहमान मशहूर सूरत में से है, सूरह रहमान जो है मशहूर मेरे ध्यान में तरफ है, सूरह रहमान मशहूर सूरतों में से मशहूर सूरत, अल्लाह ताला ने सूरह रहमान की इब्तिदा अपने नाम से फरमाई है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, सारी तखलीक का, जिन्नों की तखलीक का, हूर मकसूरात का, जन्नम का, जन्नत का सारा जिक्र फरमाया, फरमाया ना सारे पढ़ने वाले बैठे हैं यहाँ पे, सारी सूरत को जो कंक्लूड की किसने किया है, तबारक इस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इक्राम, तो तेरा आपका नाम बरकत वाला है, मर गए सारे तलाश में, जिंदगी गुजार बैठे, मौका आया तो गुमा बैठे, तबारक इस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इक्राम, तेरे रब का नाम बरकत वाला है, आज कहते नहीं मुझे बताया नहीं किसी ने, कि मुझे सिखाया नहीं किसी ने, बताया भी है सिखाया भी है, पास कराया भी है, होता किस्मत वालों से, क्या किया जाए, किस्मत कहाँ से बदली की जाए। तो ये बात इशारतन कनारतन मैंने समझा दी है, कह दी है, समझने वाले समझ गए, तो हमारे मालिक जब से ग्राम में, मैंने कभी इससे कोई काम नहीं लिया, कोई मुशक्कत का काम नहीं लिया, सिर्फ ये अपने हाथ से रस्सियाँ बांटता है बनाता है, कोई पैसा लाया या ना, मैंने कभी इसे कोई पैसा नहीं दिया, और जब से मेरे घर में बरकत बहुत है, मैंने आपको गुलाम नहीं दिया, उन्होंने कहा मैंने लेना ही हर कहते कि जानने वाला था वो शख्स, उनकी बुजुर्गी से आशना था, दे दिया। अब वो गुलाम पीछे पीछे हर साथ लेके तशरीफ दे जा रहे हैं, सुन रहे हैं, सो रहे हैं
जी।
खुश जो से सुनो, मेहरबानी फरमाओ, नहीं समझ आती तो जिसको समझ आ गई उसे सुन लेना बाद। तो गुलाम पीछे पीछे जा रहा तो रास्ते में गुलाम कहता है पीछे से, ए मेरे आका, जी ऐसे कहा तो हजरत मुड़ के कहा, देखो तुम मुझे गुलाम न आका न कहो, तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारा गुलाम, मुझे आका न कहो। उसने कहा ना मेरे आका, आप मुझे ले जा रहे हैं, तो हर मुड़ के कहा तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारा गुलाम। उस मुर्गी ने कहा कि हजरत मैं तो नहीं हूँ, कमजोर हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, मुझे आपने ले लिया, इतने बड़े बड़े तगड़े लोग थे, कवि लोग थे, उनको कहा मुझे आप मुड़ते फोन मुझे आका ना था। वो गुलाम थोड़ा सा ठिठका, थोड़ी देर फिर गुलाम ने कहा ऐ मेरे आका, फिर मुर्गी ने कहा मैंने आपसे कहा है मुझे आका करके, मुझे गुलाम करके बुला। तो गुलाम कहता है कि आपको आपके पैदा करने वाले का वास्ता। गुलाम इस बात खटका लगा, तो कहने लगा आपको आपके पैदा करने वाले का वास्ता है, लगता है कि आपको मेरा कोई राज मालूम हुआ है, आज हमारे विषय हो जाए हम लगा दें झंडा फिरने से हो जाए हजरत साहब खुशी हजार। इस चीज़ें सारी असरार में से हैं, मन का समस्या रहू बारह आसान छुपा के रखनी चाहिए, डोर डमके वाली चीज़ें नहीं है, शोर शराबे वाली चीज़ें नहीं है, इख्फा वाली चीज़ें हैं। तो हर ने शाह हमारा हाँ मैं तो तुम्हारी दुआ कबूल होती देखा। जब उसने सुना उसका रंग फक हो गया, उस गुलाम का रंग उड़ गया, कहने लगा मेरे कुछ नफर रहते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए मैं नफर पढ़ लूँ। अभी घर करीब आ गए जहाँ जाना है वहाँ जाके पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला घर बेहतर है, साथ छोटी सी मस्जिद थी वहाँ जाके उसने नफल नहीं दी। हर बैठे नफर पड़े दो चार से नफरों के बाद मुड़ के कहने लगा आपको मुझसे क्या चाहिए, आपको मुझसे क्या कर क्या चाहिए। मुझे नहीं वैसे मैं आपको ले जा रहा हूँ हमारे बुजुर्गों के पास। थोड़ा सा जिकाया उसने, कहेंगे अच्छा अल्लाह ताला आपको अपने नेक बंदों में शामिल कर ही देगा। वो गुलाम कहते हैं अच्छा अल्लाह ताला आपको अपने नेक बंदों में शामिल कर ही देगा। ये कहकर उसने ऊपर देखा, या अल्लाह मेरा जो आपका राज था वो मखलूक पे आया हो गया, या अल्लाह मेरा आपका जो राज था मखलूक पे आया, अब मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। तो ये कहा और मछली की तरह दो तरफ मारे थी, वो भी ठंडा हो गया। गुलामी से इसका नाम है, हम सब गुलाम रसूल पर हैं। काश काश आप अल्लाह ताला की जात को हाजिर नाजिर करके जवाब दीजिएगा, कभी इससे पहले ख्याल गुजरा था गुलामी का? सच बताइए आपको गुलाम आओ। तो बुजुर्गो दोस्तों, गुलामी इख्तियार करना ही असल राज है, गुलाम बन के रहना ही असल राज है। तो वो गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह रसूल नुमा बने, जिस किसी को चाहते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत करा देते। अब अल्लाह की शान जब मशहूर लेते उस ज़माने में 200 रुपए थे, मतलब आज यूँ समझो किसी 25 लाख रुपए दे पैसे देते थे। किसी साहिब दिल ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत लगा दी कि रूहानी तौर पर 200 रुपया देते, 200 रुपया बड़े 1 रुपये पर सारा घर चलता था पूरा महीना। तो मुराकबे में जब शिकायत लगाई तो सुबह कम सदार में ऐसा हुआ है, क्या समझते हो ये मामूली शादत, क्या समझते हो उसको अल्लाह ताला ने शर्म बख्शा है तो वो भी अल्लाह के रस्ते में खर्च कर देता है, कौन सा अपनी जान पर लगाता है, और रात का सारा पैसा अल्लाह के रस्ते में खराब कर देता है। तो अल्लाह की शान बीवी ने कहा कि आपने सुना बीवियाँ कम ही मुरीद होती हैं, बीवियाँ अगर सुन रही है तो मदद के साथ, पीर तो पीर होता ही है, बीवियाँ सुपर पीर होती है, वो मरीज हो जाए तो बेड़ा पार ना हो जाए। एक बुजुर्ग थे औलिया अल्लाह में से, तो बहुत कभी उनकी कैफियत थी, तो अपने हाथ से काम करते थे लोहे का हथौड़ियों से बाकी तो औजार से, इतने कवि थे उनके मुराकबात, औजार पकड़ने से जरूर मारनी हाजिर पे आगे साथ से छोड़ना दुकान खाली छोड़ कर करते रहना, दूसरे दिन आके फिर अपना सामान ले आना काम काज करना। कमाई की इतने लोगों ने, हमने क्या कमाई की, फुर हाजर से आगे फुर हाजर से कौन, हमारी कमाइयाँ क्या हैं, जिन्होंने कमाई की थी उन्होंने कमाई की, बंदर को कमाया हुआ था, रूह के मनाजर से कवि थे, बहुत कवि थे। एक दिन घर में लड़ाई हो गई, एक दिन बीवी के साथ घर में चकचक हो गई, होती रहती है, फिर एक सुनने की कैफियत, ये सुनने सबको याद है, घरवाली हो और उससे लड़ाई ना हो ये नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बाई पस्ती से पैदा फरमाया, पस्ती होती टेढ़ी है, ये कदर तो सीधी स्ट्रेट हो जाए तो टूट जाएगी, रहेगी इस तरह, चकचक हो गई, तो घरवाली कहे तू बड़ा वलीला बना हुआ है, नेक सारे बना हुआ, मेरी वजह से बना, तू तहज्जुद को तू खराटे देती है, शाम को तू सोती है, मैं अल्लाह करता हूँ तेरी वजह से, किस वजह से टकरा इस बात, झगड़ा इस बात, वो क्या मेरा हिस्सा था, वो वली साहब फरमाए तेरा हिस्सा, तू खाक तेरा हिस्सा, मेहनत मैं करूँ, अल्लाह मैं करूँ, कमाई मैं करूँ, और हिस्सा तेरा है, इस बात में कैसे हो। उसने क्या किया, बगैर बुजुर्ग के ना दूसरे नाश्ता करा दिया हजरत साहब, तो बगैर बुजुर्ग के ना नाश्ता करा दिया, अब हजरत साहब बैठे हैं आगे, बड़ी जरूर लगा रहे हैं, रूह निकल याद रखना, कान खोल के सुनो, मनाज सलूक का डायरेक्ट तल्लुक है अकल हराज। इस रस्ते में दो राज हैं, दो बुनियादें हैं, सारा इस्लाम, सारा दीन, हर शय, सारी रूह की तरक्की, रूह के अंदर कुव्वत परवाज दो वजह से पैदा होती है, कुव्वत परवाज तीन वजह से पैदा होती है, दीन का सरराज दो वजह से, सबसे पहली चीज है सिद्ध के मकाल, जुबान का सच्चा हो, देखो अगर सच्चाई होगी ना तो सच्चाई मेदे में जाके पूरे वजन में फैलेगी, लुआब जो फैलेगा सच्चाई के साथ वो भी सच्चा जाएगा। और दूसरी चीज है अकल हलाल, शहरे वाली शह नहीं, बगैर वजू के शह नहीं, अकल हलाल और सिद्ध के मकाल दो बुनियादी चीजें, और रूह की परवाज के लिए शेख के साथ कल्बी तल्लुक, रब कल्ब भी शेख, तीन चीज़ें लाजमी हैं, इसार रस्ते की असास इसी पर। तो अब हजरत साहब जरबे मार रहे हैं, रूह जा रहे हैं, घंटा हो गया, दो घंटे हो गए, घर ले आए, सलाम अलैकुम, बैठे, आज काम काज नहीं कर रहे, ऐसे देखे ना के सारा कुछ तेरा ही है, क्योंकि आज कुछ काम काज नहीं फरमा रहे, उनके नहीं सारा कुछ तेरा ही, समझ गई कि खुदा के बदले खाना बगैर बोल क्यों नहीं खा। तो मैं गुजारिश कर रहा खिदमत में, घरवाली की बातें शुरू हो गई तो फिर बड़ी देर हो जाएगी, इसीलिए इतफा करता हूँ, समझने वाले समझ गए। घर में याद रखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, आखिरी वक्त है, और जो चंद बातें इरशाद हुई उसने घरवाली का भी बारे में तुमसे तुम्हारे बीवियों के बारे में पूछ होगी। हर शख्स चाहे मौलवी हो चाहे आलम हो जो भी हो, घर के अंदर इल्ला माशाल्लाह वाहशतनाक हालात होते हैं, कतई नहीं होने चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला का मशहूर वाक्य आप तकरीबों में सुनाते हुए लोगे, मशहूर फरमान मौजूद है कि मर्द को घर में इस तरह से जैसे बच्चा रहता है, कुछ भी हो जाए, अब बातें ज़मीन आ गई हैं, कुछ भी हो जाए, सूरज मशर से चढ़ता है मगरब से चढ़ना शुरू हो जाए, वो बीवी की बीवी रहेगी, मर्द नहीं बनती, आप बीवी नहीं बनते, आप मर्द के मर्द ही रहोगे, समझ लिया आपने। और अगर वो लड़े झगड़े, खुदा ना खुदा खुदा आपको गालियां दे, आपको गल ना पकड़े, मशहूर वाक्य है, आपको मारे कुछ बिगड़ जाएगा, और आपने एकदम मुंह से कह दिया कि तुम मेरे घर से दफा हो जाए तो एक तलाक हो जाएगी, फिर इतना कह दिया कि मेरे घर से दफा हो जाए, निकले मेरे घर से, एक तलाक हो जाएगी, उसके सारे इकदाम पर कोई असर मरतब नहीं है, आपकी इतनी सी बात पर एक असर मरतब हो, इसी से समझ लो कि कितना मामला नाजुक है। अक्सर लोगों ने तीन तीन तलाकें देकर घरवाली को अपने घर रखा हुआ है, और हदीस में तो महबूब इमाम ने लिखा है कि बदतरीन जना है, बदतरीन, फिर फतेहबाजी करते हैं, फतेह लेते रहते हैं, ये गलती से हो गया, ये गुस्से में हो गया, तो तलाक मोहब्बत से दी जाती है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि तलाक मोहब्बत से दी जाती है, मेरे हजरत ने सबसे पहले जो काम किया सर अपने पूरे इलाके में, फतेहबाजी का कला कमा कर कर दिया, लोग 5 रुपये लेके फतेह दे रहे थे, कला कमा किया, دین سچا ہے, دین کڑوا ہوتا ہے, الحق مرون حق مشن کڑوا ہوتا ہے, چھوڑتے نہیں, کسی کو معاف نہیں ہوا تھا, کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے, سب گنجائشیں نکالنی ہیں, لال کتابیں دیکھنی پڑے گی, کلیئر کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. تو بیوی کو جب سنا, اس نے تکرار شروع کر دی گھر میں, سنا کہ آپ رسول اکرم سے زیارت کراتے ہیں, انہوں نے کہا ہاں ہم میری بھی کراؤ, وہ 200 روپے لاؤ, وہاں رام رسول صاحب سے بات سنا رہا ہوں, پھر وہاں پہ پہنچ گیا, انہوں نے 200 روپے دو سے بیعت کرا دیتے, زیارت کرا دیتے, انہوں نے کہا میرا نان نفقہ آپ کے ذمے ہے, آپ مجھے 200 روپے دو, میں آپ کو 200 روپے دے دیتے, انہوں نے کہا نان نان نفقے کی بات ہے, یہ آپ کا اپنا شوق ہے, ذوق ہے. اب صبح دوپہر شام گھر میں تکرار شروع ہو گیا, میں آپ سے کیا کہہ رہی تھی, میں آپ سے کیا کہا, وہ کہ بھی 200 روپے دو, میں کرا دیتا, انہوں نے 200 روپے جھگڑا شروع, لڑائی شروع, چک چک شروع کر رہے ہیں. ہمیں اچھا ایک صورت ہے, ایک گنجائش ہے, انہوں نے بتاؤ حکم کرو کیا گنجائش ہے. اب وہ 75 سال کے 80 سال کے گھر والی 70-75 سال کی بوڑھی, تو بالکل نئی نویلی دلہن بن کے بیٹھ جا, لال کپڑے پہن لے, لال بٹا لے لے, مہندی لگا لے سر پر, آنکھوں پر, تو میں کچھ سوچوں گا پھر. حضرت ثانیہ نے دکھایا کہ شوق بھی کیا چیز ہے. وہ اللہ کی بندی مہندی منگوائی, مہندی لگائی, سر سارا سرخ کیا اور ہاتھوں میں لگائی اور سارا کچھ کر کے لال چادر پہن کے اوڑھ کے دلہن کی طرح بیٹھ گئی. جنہیں جیسے کہ وہاں پڑھ کے آئے دیکھا تو وہ تیار بیٹھی آئے کہہ کہ رسول اکرم سے زیادہ نصیب ہو جائے. جنہوں نے تب گھروں کے آگے دروازے کہاں ہوتے تھے, ٹاٹ سے لگے ہوتے تھے, دیکھا تو فوراً پاؤں موڑ کے چلے گئے, ان کی بھائی کو بلا رہے اور دیکھ تیری بہن کو کیا ہوگا, عمر دیکھ اور کرتور دیکھ, آ جا وہاں سے کیا ہوگا, دیکھ سنی جا کے بھائی آیا پیچھے پیچھے, السلام علیکم. وہ دلہن ماں بنی, ان کا بیڑا گھر, یہ تھی کیا سوچی تو کیا بنی, چیخ ماری, بڑی بےزتی ہوگی بھائی کو میرے بلا رہے, جی چیخ مار کے گری ایسے سر کے بعد ترجیح فرمائی اور سلے کو زیادہ کر. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, بیعت کا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے, بیعت اصل میں بک جانے کا نام ہے, اپنی حیثیت شیخ استاد کی بات ماننی ہوگی, جس طرح وہ چلائے اس طرح چلنا ہوگا, کیونکہ انسان خود جو ہے نفس کے الکاح کو, شیطان کے الکاح کو نہیں سمجھ سکتا, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ساری سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وطب سبھی رمن انا بے, اسی لیے فرمایا جب تک میرے رستے کی طرف گیا ہے بس تو اس کی تابے داری کا کسی شک مشروط ہے. تو دیر بڑی ہو جاتی ہے, ہر روز کسی جس کسی ظاہری بیعت کرنی ہے, نفل پڑھ لیجیے, اشراق کا ٹائم ہو گیا, نفلوں کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ظاہری بیعت ہوئے گی. بیعت کا طریقہ یہ ہوئے گا کہ ان شاء اللہ کچھ کلمات پڑھے جائیں گے, میں طریقہ بتا دوں گا, بس سوچ کے سمجھ کے. ہمارے یہاں کوئی نمبر شمار نہیں ہے, حضرت صاحب کے لیے 1 لاکھ مریض ہے, 2 لاکھ مریض قطر ہمارے یہاں مریض, ہمارے سلسلے میں جو اصل بیعت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہے, اسے روحانی بیعت کہتے ہیں. درخت چھپا تو دی آپ نے, کاش آپ نے پڑھی بھی ہو, اس کو پرنٹ دیکھنا, خوبصورت دینا, خوبصورت کاغذ دیکھنا, لکھائی پڑھائی دینا اور چیز ہے, اس کو سمجھنا اور چیز. اصل بیعت ہمارے سلسلے میں ظاہری نہیں ہے, ہمارا سلسلہ ایسی ہے کہ تو حضرت نے اسی شروع فرمائی کہ سارے غوث و کتب نہیں بن سکتے, کم از کم عقیدہ بن جائے. انسان کی نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے, عقیدہ ٹھیک ہے تو نجات ہو جائے گی اللہ کرے, اور خدا نہ خدا عقیدے میں گڑبڑ ہے. مولانا ثانی سے فرمایا کرتے تھے علماء کو برا بلا کہنا, گالیاں دینا کفر نہیں ہے, اکثر فرمایا کرتے تھے, کیونکہ وہ زمانہ فساد کا تھا, انگریز نے بڑے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے, علماء حق کے خلاف لوگوں نے بڑے بڑے فسرے, بڑے بڑے پکھنڈے شروع کر رکھے تھے, تب ہم بار بار یہ بات سمجھتے کہ علماء کو گالیاں دینا کفر نہیں ہے, مگر دیکھا ہے کہ مرتے کفر پر ہی, ایمان کے ساتھ مرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. من آد علی ولی ان فقط اعظم تو جسے کچھ ہی ہے. تو بزرگ دوستو اصل چیز یہ ہے, بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ کچھ شرم حیا رہ جائے, کچھ عقیدہ بچ جائے, منارہ سلوک طے کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدر تک روحانی بیعت کے پہنچنا تو بڑے قسمت والوں کی بات, بہت بڑے قسمت ہے. اصل سلسلہ نقشبندی ایشیا میں روحانی بیعت ہمارا سلسلہ اسی طرح امتیاز رکھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدر تک روحانی بیعت. تو ظاہر بیعت انشاءاللہ نفل پڑھنے کے بعد کر لی جائے گی. آپ تب تک سوچ رہے اگر آپ بیعت کرو یہ نہیں کر رہے تو بڑے خوش ہوں گے, آپ نہیں کرو تو بڑے خفا ہوں گے. قطعاً نہیں, قطعاً نہیں, یہ مقصد قطعاً ہے. آپ کو چیز سکھائیے, سیکھ جاؤ, حاصل کرنے والے بن جاؤ. اگر آپ بیعت کرو گے تو شاید کبھی ہو جائے گی, ورنہ ثواب اپنی جگہ پہ ملتا رہے گا. ہمارا توفیق اللہ باللہ علیہ توفیق.